मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 4 सितंबर 2015 के इस afeis.com में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने अभी फरवरी 2016 में एकेडमी की होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने एडमिशन्स कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मुकेश कुमार झा अररिया बिहार से, पटेल वेंकटेश बाबू भाई हिम्मत नगर गुजरात से, सोनू कुर्मी सागर मध्य प्रदेश से, पीयूष कुमार हरदोई से, रवि यादव अंबारी आजमगढ़ से और कनिष्क माथुर जयपुर राजस्थान से। तो मुकेश, पटेल वेंकटेश, सोनू, पीयूष, रवि और कनिष्क, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि शायद कल मैं कुछ गलती से जल्दबाजी के कारण जो फरवरी 2016 की क्लासेस हैं उनके लिए शायद अक्टूबर 2016 बोल गया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अभी हमारे यहां जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वे सिर्फ फरवरी 2016 की क्लासेस के लिए ही हो रहे हैं। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है और आपको मालूम है कि अगले दिन यानी कि शनिवार और इतवार को इस पे जो ये डेली ऑडियो गाइडेंस है वो नहीं आता है, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस की क्लिपिंग्स मिलेंगी, साथ ही आपको कुरुक्षेत्र और योजना के कुछ आर्टिकल्स भी मिलेंगे और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट के रहे हैं उन्हें भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो हमारा लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज होता है। फ्रेंड्स, हम लोग कैपेबिलिटी पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस बात को और आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारी कैपेबिलिटी होती है और जो हमारा कैरियर होता है वो दोनों में फर्क होता है। इस फर्क को आपको समझना होगा, क्योंकि यदि आप इस फर्क को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक मानने के कारण कुछ गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कैपेबिलिटी तो वो होती है जो हम में है, और जो हमारा जो कैरियर होता है वो होता है जो हमें करना चाहिए। देखिए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपको ये करने के बाद कुछ पैसे मिल जाएंगे, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा या आपको बहुत अधिक सम्मान मिल जाएगा, कोई अवार्ड मिल जाएगा। हमारी कैपेबिलिटी का इससे कोई संबंध नहीं है। यदि वो हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, एक संयोग की बात है। लेकिन एक बात और भी है फ्रेंड्स, कि आज आप और हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में ऐसी कोई चीज रही नहीं गई है जहां हमारी अपनी जो कैपेबिलिटी है वो हमें कुछ पे न कर सके, राइट? लेकिन जो कैरियर है, वो कैरियर का संबंध इस सच पूछिए तो हमारी जो समसामयिक स्थितियां होती हैं, मार्केट की जो डिमांड होती है, उन सबसे होता है। तो निश्चित रूप से आप सब जिस दौर में हैं उस दौर में जब आप अपने कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर से जोड़कर देखेंगे ही, और जोड़कर देखना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि जब आप कैरियर के लिए अपनी कैपेबिलिटी का उपयोग करते हैं और अगर मैच हो जाता है तब तो बहुत बड़ी बात है, और अगर वो मैच नहीं होता है तो आप कभी ये मत मान करके चलिए कि अब आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कैरियर का शिकार हो गई है तो अब वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने कैरियर के लिए अपना एक अलग रास्ता चुना, क्योंकि वो समय की मांग थी, वो अपनी खुद की भी परिस्थितियों की मांग थी, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार भी काम करते रहे और एक प्रकार से आप कह लीजिए कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए एक पैरेलल लाइफ को लीड किया। इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा अलग करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छे से आप निर्णय ले पाएंगे कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और फिलहाल आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं समझता हूं कि और मैं क्लियर कर दूं। और इसके क्लियर करने के साथ ही शायद कैपेबिलिटी के बारे में ढेर सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जो आज सुबह वॉक करते हुए मेरे दिमाग में अचानक कौन था और फिर मैंने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि वाह, ये बात तो मुझे अपने प्रिय श्रोताओं से शेयर करनी ही चाहिए। दोस्तों, बेसिकली कैपेबिलिटी क्या है? सच पूछिए तो मुझे ये लगता है कि कैपेबिलिटी इनफैक्ट अपने आप को बदलने की क्षमता है। बस अगर हम बहुत फिलोसॉफिकल तरीके से सोचें और बहुत डीप में जाकर सोचें तो ये वो क्षमता है कि आप अपने आप को किस सीमा तक बदल सकते हैं। लेकिन हम क्या मान करके चलते हैं कि कैपेबिलिटी हमारे नेचर के द्वारा हमारे अंदर डाली गई कोई क्षमता है और वही सामने आनी चाहिए और उसी में हम कुछ कर सकते हैं, बाकी में हम अपने क्लाइमेक्स को टच नहीं कर सकते या अपने बेस्ट को पा नहीं सकते। मित्रों, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल यह है कि जब हमने अपने लिए कोई रास्ता चुन लिया तो वो रास्ता हमें अपने अनुसार, मतलब वो रास्ता अपने हिसाब से हमसे कहेगा कि तुम ये करो, यानी कि बदलो। बदलने के बिना हम उस रास्ते पर चलने लायक नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और आप मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र की यात्रा के लिए जो सामान, साजो सामान आपको चाहिए, जो आपकी अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो मानसरोवर की यात्रा में काम नहीं आएगी। जब आप सिक्किम से आगे चलना शुरू करेंगे तो आपको बर्फ मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप जब जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो वहां पता लगा कि आपको ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट नहीं होने चाहिए, आप में क्षमताएं फिजिकल पावर होनी चाहिए, आप फिर गैस सिलेंडर भी और पता नहीं क्या क्या सामान अलग अलग लेके चलेंगे। अब आप कह दें कि साहब नहीं, ये तो मैं लाव लश्कर लाद करके तो मैं यात्रा कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं मानसरोवर जाऊंगा। इसका मतलब है कि मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जिन बदलावों की जरूरत है उन बदलावों की ही इच्छा आप में नहीं है, तो फिर बदलेंगे कैसे? मित्रों, पता नहीं क्यों ये मुझे सिद्धांत बहुत सटीक सिद्धांत लगा और डेफिनेटली इसको मैं और ज्यादा विकसित करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, मुझे महसूस हुआ, ये क्लिक ही किया कि जो आगे चलकर हारते हैं या असफल हो जाते हैं या बड़ी उस लैंग्वेज में कहें मार खा जाते हैं, तो शायद इसीलिए क्योंकि उनमें अपने आप को बदलने की कैपेसिटी नहीं थी। अगर उनमें बदलने की कैपेसिटी होती तो उनके साथ वो हादसा नहीं होता जिसे हम सो कॉल्ड असफलता कहते हैं। हालांकि असफलता जैसी भी कोई चीज वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं और अंत तक यही कर रहे हैं, तो फिर तो असफलता हाथ लगेगी ही, फिर वही आपके लिए सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी कैपेबिलिटी, किसी भी तरह की अपनी कैपेबिलिटी के बारे में सोचें, तो उसको दो बातों का उसमें ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। मानसिक स्थिति का मतलब है कि आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो आपकी आवश्यकता है, जो उसकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता नहीं, शायद इसको फिर आप गलत तरीके से लेंगे, जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप कितने अपने आप को बदलने को तैयार हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1000 में 999 लोग बदलने को तैयार नहीं होते और फिर उसका कंफर्मेशन वो दूसरों से चाहते हैं। ये और मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास ऐसे मेल आते हैं कि मैं सिविल सर्वेंट तो बनना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे, मेरे पास एक ही साल का वक्त है किंतु पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं अपना घर छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं बनना चाहता हूं। इसका मतलब हुआ कि वो बिना बदले ही सब कुछ पाना चाहते हैं। जबकि मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस की तैयारी करना ही अपने आप में अपने को बदल लेना है। ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे प्रोसेस को, लाइफ स्टाइल को, सोचने की क्षमता को, देखने के नजरिए को इतना बदल देगा कि आप बाद में वही रह ही नहीं जाएंगे जो आप तैयारी करने से पहले थे। और इसी के लिए लोग तैयार नहीं है, फिर वो कहते हैं कि सिविल सर्वेंट भी बनना है। तो मित्रों, जो रियल संकट है ना, वो सच पूछिए अपनी कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, वो यही है कि हम बदलने को तैयार नहीं होते, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को हम मानकर चलते हैं कि ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि आपकी अपनी जो मानसिक स्थिति है वो बदलाव के कितना अनुकूल है, इस पर आपको सोचना चाहिए। दूसरी जो है दोस्तों, वो है कि आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि जब भी आप अपनी कैपेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, या अपने कैरियर को ही चलिए मैं यहां ले लेता हूं, तो आप अपने व्यवहार के बारे में सोचिए कि वो जो व्यवहार है उस चीज को पा लेने के बाद जो आप बनना चाहते हैं उसमें वो फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। अगर वो उसमें फिट नहीं बैठेगा तो आप आगे चल करके भी परेशान होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, अकेले में अच्छा लगता है, किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, और पता लगा कि आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो फिर तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि सिविल सर्वेंट तो पब्लिक का आदमी है, और अगर वो वहां जाकर के इस तरह का व्यवहार करेगा कि अलग थलग रहे, एकांत में रहे, तो फिर वहां उसको अलग तरीके के फ्रस्ट्रेशन महसूस होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि फिर उसको, अब चूंकि वो तो सर्विस में आ गया है, उसके अपने कुछ राइट्स हो गए हैं, तो उसको सर्विस से निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन कैरियर पर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। उनको चैलेंजेस, जॉब पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, सामान्य सी ऐसी पोस्टिंग दी जाएगी जहां पर कोई ज्यादा काम ना हो और आराम से वो अपना टाइम पास कर सके। फिर उसको लगने लगेगा कि यार मेरे साथ के लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतने पावरफुल हैं और उनकी इतनी प्रतिष्ठा है, उनका नाम भी छपता है अखबारों में, लेकिन मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आपका अपना जो बिहेवियर पैटर्न है, इस बिहेवियर पैटर्न को आप वॉच कीजिए। मित्रों, मैं इतने पॉलिटिशियंस से मिला हूं और बहुत अच्छे रिनाउंड पॉलिटिशियंस से मिला हूं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस से मिला हूं। पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है उनका बिहेवियर होता है। अगर उनके उस बिहेवियर में सामान्यीकरण नहीं है, उसका जनरलाइजेशन नहीं है कि वो किसी से भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, हर समय मिल रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, उनसे टेंपर लूज नहीं कर रहे हैं, ईगो नहीं है, तब जाकर के वो पॉलिटिशियन बन पाते हैं। अब ये बात अलग है कि बन जाने के बाद जब वो मिनिस्टर हो जाते हैं तब वो क्या व्यवहार करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य तौर पर जो उनका पूरा का पूरा उस ऊंचाई तक पहुंचने की जो प्रक्रिया रही है, जो यात्रा रही है, वो व्यवहार के स्तर पर बहुत ही सहज की यात्रा रही है। अदरवाइज संभव नहीं है इसमें सर्वाइव कर पाना। तो मित्रों, मैंने अभी आपसे ये कुछ दो तीन जो एलिमेंट हैं आज मैंने चर्चा डिस्कस किए हैं। पहली बात, इसको फिर आप लोग भी ध्यान से सोचिएगा कि कैरियर और कैपेबिलिटी दोनों एक नहीं होती, दोनों में फर्क होता है, दोनों का मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? दूसरी बात मित्रों, जो मैंने आपसे कही है कि याद रखिए कि जो कैपेबिलिटी है वो बेसिकली बहुत इस बात पर निर्भर करती है कि आप में अपने आप को बदलने की क्षमता कैसी है, और ये जो बदलने की क्षमता है ये आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई है, इसका मूल्यांकन कीजिए। और तीसरी जो बात है वो है कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न को चेक कीजिए कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कहां अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और फिर उसी के अनुकूल फिर आप अपनी कैपेबिलिटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब बड़े वैज्ञानिक तरीके से आप उसे खोज निकालेंगे। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम लोग बस इतने ही चर्चा करेंगे, आगे हम लोग और देखेंगे कि किस टॉपिक को लेकर के चलें, और इस बीच में अभी दो दिन का गैप है, अगर इस बारे में मुझे कुछ और सूझा कह लीजिए तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, या आप लोग इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे मेल लिखें, मैं उनको आधार बना करके फिर लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में उसकी चर्चा करूंगा। मित्रों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल का AIR न्यूज आप लोगों ने भी तो सुना ही होगा, क्या राय है आप लोगों की AIR न्यूज के बारे में, क्या उसमें कुछ थी, सिविल सर्विस के हिसाब से कुछ था, और अगर था तो क्या था? मित्रों, कल का AIR न्यूज इस मायने में बड़ा अद्भुत था कि सही अर्थों में सिविल सर्विस के लायक उसमें कुछ नहीं था, बड़ा अद्भुत था, लेकिन उसमें जो एक सेंटेंस था, या कह लीजिए जिसको हम एक ऑब्स्ट्रेक्ट बात कहते हैं, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिसको मैं जो क्लास में स्टूडेंट आते हैं उनको इस रूप में समझाने की कोशिश करता हूं, और अंग्रेजी जानने वाले इस मुहावरे का बड़ा प्रयोग भी करते हैं, बिटवीन द लाइन्स, मतलब दो लाइन, ऊपर की लाइन लिखी हुई है, उसके नीचे लाइन लिखी हुई है, फिर उसके नीचे लाइन लिखी हुई है, तो पूरा पन्ना लाइनों से भरा हुआ है लेकिन हर दो लाइन के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ स्पेस है, सादा है, ब्लैंक है, उस ब्लैंक में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और सच यह है कि उस ब्लैंक में ही सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, उसी को कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, उसमें क्या लिखा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो वहां है। तो कल के न्यूज में मैं आप लोगों को एक थॉट प्रोवोकिंग चीज बता रहा हूं कि कैसे चीजों को पकड़ना चाहिए। मैं आज आपको दो तीन ऐसी चीजें बताऊंगा, दो चीजें तो कम से कम बताऊंगा ही कि कैसे पकड़ना चाहिए। वो ये मित्रों कि कल की न्यूज में आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे और उसमें वो अपना वक्तव्य दे रहे थे और उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और वो ये बात कही कि अब हमें जलवायु परिवर्तन से ज्यादा जरूरत जलवायु न्याय की है। ध्यान आया आपको, जलवायु न्याय, ये शब्द मैंने पहली बार पढ़ा सुना। ये बात अलग है कि इसकी मांग एक अलग तरीके से पहले से ही की जाने लगी है। अब मित्रों ये जो जलवायु न्याय क्या है, क्या आप इस पर सोच सकते हैं, कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं? मान लीजिए मैंने जलवायु न्याय पर आपको 200 शब्दों में एक छोटी सी टिप्पणी लिखने के लिए कह दिया गया कि जलवायु न्याय पर 200 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, क्या लिखेंगे, क्या कंटेंट होगा आपका? जलवायु का भी कोई न्याय होता है, ये न्याय क्या जलवायु के प्रति न्याय है या जलवायु के माध्यम से देश के प्रति न्याय है, लोगों के प्रति न्याय है, किसके प्रति न्याय है? इसमें आप कंटेंट कहां से लाएंगे? मित्रों यदि आप लोग कंटेंट ले आते हैं, आप मान करके चलिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी ठीक हो रही है और उससे भी बड़ी बात कि आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो डेवलप हो रही है। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जब तक आप अपनी एनालिटिकल पावर को स्ट्रांग नहीं करेंगे मित्रों, तब तक सिविल सर्विस में अच्छे नंबर ला पाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। अब आप इसको कैसे डेवलप करते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए अब आप इसका क्लू कहां से पकड़ेंगे, न्यूज से ही मैं क्लू बता रहा हूं। जलवायु न्याय का जो सूत्र आप पकड़ेंगे वो सूत्र कहां से पकड़ेंगे, और मैं केवल न्यूज को आधार बना रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर की पूरी स्पीच को आधार नहीं बना रहा हूं, जो न्यूज में हमने सुना है। देखिए न्यूज में ही ये बात भी थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो जलवायु जो गड़बड़ हो रही है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के कारण इस सबसे ज्यादा जो इसके शिकार हो रहे हैं वो गरीब लोग हो रहे हैं। मतलब जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अल नीनो जब आता है जो खासकर वो गैसेस के कारण अल नीनो प्रभाव बढ़ रहा है, आपको मालूम है गर्मी बढ़ने के कारण अल नीनो प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसके कारण पता लगता है कि मानसून गड़बड़ हो जाता है, मानसून गड़बड़ होने के कारण वर्षा गड़बड़ हो जाती है, तो सबसे ज्यादा कौन लोग दुष्प्रभावित होते हैं, गरीब लोग दुष्प्रभावित होते हैं। अगर बारिश ज्यादा हो गई मौसम गड़बड़ होने के कारण तो बाढ़ में कौन लोग डूबते हैं, लू में कौन लोग मारे जाते हैं, ये गरीब लोग मारे जाते हैं। ओजोन परत नष्ट हो गई, जो किरणें आएंगी तो किरणें शरीर में चर्म रोग पैदा करेंगी, कैंसर पैदा करेंगी, चर्म कैंसर पैदा करेंगी, तो धूप में सबसे ज्यादा कौन लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो बीमारियां भी गरीब लोग झेल रहे हैं, आर्थिक रूप से नुकसान भी गरीब लोगों का ही हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं, तो जंगल काटने से नुकसान किसका हो रहा है, क्योंकि काटने वाले तो मजे से कमाई कर रहे हैं, चाहे वो जंगल काटने वाला ठेकेदार हो, चाहे वो मिल का मालिक हो, चाहे वो इंडस्ट्री वहां लगा रहा हो, कुछ भी हो, वो तो कमाई कर रहा है। लेकिन उस जंगल को काट करके जो हम जलवायु में परिवर्तन पैदा कर रहे हैं उससे नुकसान किसका हो रहा है, वहां रहने वाले आदिवासियों और जनजातियों का हो रहा है। तो आप देखिए कि आपने अगर प्रधानमंत्री जी के इस क्लू को पकड़ लिया तो आपको मिल जाएगा कि जलवायु न्याय से क्या अर्थ है। और दूसरा आपको ये भी मालूम होगा मित्रों, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी पहले से तैयारी कर रहे हो, ये मैं न्यूज से हटकर बता रहा हूं कि इसका एक दूसरा सिद्धांत भी है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जो ओजोन की परत नष्ट हो रही है, आपको मालूम है वो गैसेस के कारण हो रही है, मीथेन गैस और उन सब के कारण नष्ट हो रही है। अब ये जो गैसेस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस वगैरह होते हैं, इस गैस का उत्सर्जन इमिटेट कौन ज्यादा कर रहा है, डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो कर रही हैं, तो जो औद्योगिक राष्ट्र हैं वो सबसे ज्यादा जलवायु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो तो जलवायु को बचाने में लगे हुए हैं। सच पूछे पूरी तरह से तो आप नहीं कह सकते कि बचाने में लगे हुए, लेकिन कह लीजिए कि बहुत कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जंगल है, वहां पेड़ है, वो ऑक्सीजन इमिटेट कर रहे हैं, उद्योग वैसे नहीं लगे हुए हैं जिसके कारण कि वो गैसेज निकल रही हों। तो एक जलवायु न्याय का सिद्धांत ये भी है कि भैया तुमने तो सब अपने जंगल उजाड़ करके इंडस्ट्री लगा दी और तुम तो डेवलप्ड कंट्री में आ गए, हम तो अभी जंगल को बचाए हुए हैं और ये जो जंगल हमारे बचाए हुए जंगल से जो ऑक्सीजन निकल रही है और जो दूसरे फायदे हो रहे हैं और जो ये फॉरेस्ट कार्बन का शोषण कर रही है, अवशोषित कर रहे हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि हमारे यहां ही हो रहा है, तुम्हारे यहां की भी हवा में वही फैला रहे हैं, क्योंकि ये बाउंड्री आप जमीन पर तो खींच सकते हैं, हवाओं के लिए तो आसमान में नहीं खींच सकते। तो जो हमारे फॉरेस्ट से फायदा होना चाहिए एनवायरमेंट को, वो तुमको मिल रहा है, और तुम्हारे जो गैसेस छोड़ने से जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसका नुकसान हम झेल रहे हैं। तो यहां भी एक न्याय कर लो। और आपने देखा होगा कि जो प्रोटोकॉल्स हुए, जो क्योटो प्रोटोकॉल्स और मॉन्ट्रियल, जिनको लेकर के साल प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनमें ये बात बहुत तेजी से उठी थी और फिर डेवलप्ड कंट्री ने ये स्वीकार भी किया कि हाँ, डेवलपिंग कंट्री को इस तरीके से कुछ मदद दी जानी चाहिए। तो मित्रों, इस तरीके से कुछ चीजें लेकर के आप 200 शब्दों में तीन चार पॉइंट्स को लेकर के, एक आर्थिक पक्ष हो गया, एक हेल्थ का पक्ष हो गया और तीसरा इंटरनेशनल पक्ष हो गया, इन तीन पॉइंट्स को लेकर के तीन पैरा में आप वो कर दीजिए तो बड़े आराम से आपके 200 शब्द हो गए और तीन पॉइंट कवर हो गए, इंटरनेशनल से लेकर के नेशनल तक के पॉइंट कवर हो गए। हो गया जलवायु न्याय, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, इस तरीके से हो चुका होगा। मित्रों, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताता हूं और ये प्री के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं, अभी जो सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं ये प्री के हिसाब से बता रहा हूं, और अभी जो मैंने बताया ये प्री के हिसाब से ही नहीं था, ये सही मायने में मेंस के हिसाब से ज्यादा था, जिसका इस्तेमाल आप अपने एसे के लिए भी कर सकते हैं और आप अपने फिर जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बट नेचुरलिटी की जनरल स्टडीज के किसी भी थर्ड पेपर में, इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं एक दूसरे मुद्दे पर, प्री की तैयारी की ही मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। आपने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने वो देखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के तो कवर पेज पर है और दैनिक जागरण में भी वो फोटो छपा है, दूसरे पेपर्स में भी वो फोटो छपा होगा, जबकि एक टर्की के समुद्र पर, समुद्र के तट पर एक 2-3 साल का बेचारा बच्चा औंधे मुंह पड़ा हुआ है। ओह गॉड, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर, प्यारा सा बच्चा औंधे मुंह पड़ा हुआ है और ये वायरल हो गई और पूरे के पूरे यूरोपीय देशों में खलबली मच गई इस फोटो को लेकर के, इस फोटो को देखने के बाद। मित्रों, ये एक घटना है, बहुत ही दुखद और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चलिए हम इस घटना पर नहीं जाते, हम आते हैं सिविल सर्विस का इस घटना से क्या रिलेशन है। आपको ये मालूम है दोस्तों कि इधर इधर का जो मध्य पूर्व, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, गोलन पहाड़ियों को लेकर के आया हुआ ना मध्य पूर्व, तो ये जो सीरिया जहां आईएस का पूरा दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, उसके प्रेशर के कारण ये मध्य पूर्व और इधर के जो हिस्से हैं, इन देशों से लोग छोड़कर जा रहे हैं, छोड़कर के अपने देश को छोड़कर के जा रहे हैं, क्योंकि जो इसका आतंक है वो उनके नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये जो विस्थापित हैं, ये विस्थापित जैसे भी हो रहा है देश छोड़ रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई नौकाओं से जा रहा है, कोई सड़कों से जा रहा है और दूसरे देशों में आप देखेंगे कि फिर यूरोप आ जाता है ना, आप नक्शे में देखेंगे तो बिल्कुल यूरोप, और टर्की तो है ही है, बॉर्डर ही है एक तरह से कह दीजिए, एशिया और यूरोप का, हालांकि राष्ट्र के रूप में यूरोप में आता है, वहां जा रहे हैं और वहां जाने के बाद उनको एक दूसरे तरह का संकट झेलना पड़ रहा है। तो ये जो बच्चा है, इसका परिवार नाव में ही बैठ करके टर्की से जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो नाव पलट गई और फिर वो बच्चा वहां इस रूप में पड़ा हुआ दिखा। तो मित्रों, इसको लेकर के पूरे यूरोप में इस बात की खलबली है कि ये जो विस्थापित लोग जो आ रहे हैं, इनको क्या किया जाए। ह्यूमन राइट्स भी है, मानवता भी है, यूरोप के ही वो हिस्से हैं, मनुष्य हैं, क्या हम एक चूंकि वो दूसरे देश के नागरिक हैं तो उनको अपने यहां आने से रोक दें, सीरिया पर किस तरह से कैसे इन सारी चीजों को कंट्रोल करें, कुल मिलाकर के ये है। मित्रों, इसके साथ ही एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं शेंगेन एग्रीमेंट, उच्चारण पता नहीं मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, इसकी स्पेलिंग है SCHENGEN एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट बहुत पहले का एग्रीमेंट है जो यूरोपीय देशों ने आपस में किया था। इस एग्रीमेंट का जो सिद्धांत था वो कुल ये था कि जो यूरोप के देश हैं, जब तो यूरोपीय कम्युनिटी ही पूरी बन गई है, कि जो यूरोप के देश, आप देखेंगे ना नक्शे में, आप देखिए तो बड़े छोटे 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 देश हैं, है ना, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत कम है, इसमें जब कोई भी एंटर करेगा तो आपको मालूम है कि जब भी हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो एक तो हमारे अपने देश का पासपोर्ट होता है, वो हमारी परमिशन है कि तुम जा सकते हो बाहर, फिर जिस देश में जाना होता है वहां हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम आपके देश में क्या आ सकते हैं, जिसको हम वीजा कहते हैं। तो अब सवाल है कि यूरोप में अगर कोई एंटर करना चाहे तो अगर 5-7 देश में तो कितनी जगह वो वीजा लेगा। तो ये जो शेंगेन एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट, ये एक जगह का नाम है जो शेंगेन है, ये शायद बेल्जियम या कहीं है, एक जगह का नाम है, गांव था वहां ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उस जगह के नाम पर है ये। वहां एक साइन हुआ कि यूरोपीय देशों में जब कोई भी आना चाहेगा तो उनको वीजा की जरूरत नहीं होगी। सभी देशों ने एग्री किया कि हम अपनी सीमाओं को ओपन करते हैं और वहां कोई भी आ सकता है। हां, बट नेचुरल है कि जब वो एंटर करेगा उस समय उसे वीजा अपना लेना पड़ेगा और जो और ये काम करना पड़ेगा, जो बॉर्डर कंट्रीज होंगे यूरोप के, जो एंटर करते ही जब इधर से जब लोग जाएंगे नीचे की तरफ से, तो जो बॉर्डर कंट्रीज होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रीस और इटली पर इसको लेकर के सबसे ज्यादा प्रेशर आया, लेकिन ये उतना कामयाब नहीं रहा। इसके इस पर जितने लोगों ने साइन किए थे, शायद उनकी टोटल पॉपुलेशन लगभग लगभग 40 करोड़ के आसपास है, तो काफी बड़ी आबादी भी है अगर उस तरीके से देखें तो। अब इस पर बात हो रही है खासकर इस घटना के बाद से कि इतने विस्थापित शरणार्थी जो है ना आ रहे हैं, अब इनको क्या किया जाए। तो ये जो शेंगेन एग्रीमेंट है इसको फिर से लागू किया जाए ताकि इनके आने पर कोई प्रतिबंध न हो, ये जहां भी आना चाहते हैं आए रहें, कम से कम एक बार तो स्थिति को संभाला जाए, मानवता के नाम पर संभाला जाए, बाद में फिर हम देखेंगे। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि इसलिए बताई है कि आपके दिमाग में ना जब हम किसी भी बात को इतने डिटेल में पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में थोड़े से लंबे समय तक रहती है। शेंगेन एग्रीमेंट के बारे में इसीलिए मैंने एक स्टोरी लेकर के आपको बताने की कोशिश की है। अब सोच कर देखिए कि अगले साल जो अगस्त में प्री का एग्जाम होना है उसमें शेंगेन एग्रीमेंट पर कुछ आ जाए कि ये क्या है, तो आप तो चौंक जाएंगे, शेंगेन एग्रीमेंट की ये क्या होता है, ये कहां से पूछ दिया गया। लेकिन उसका आधार अभी यहां है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, वो नॉलेज सेंटर में अवेलेबल है, वो आप पढ़ लेंगे और उसमें इस एग्रीमेंट की चर्चा है। तो जो सतर्क रीडर होते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, वो उसको पकड़ लेते हैं, हो सकता है कि ये आ जाए। इस बार के प्री के पेपर को आप उठा करके देखिए तो उसमें खासकर क्लाइमेट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर जो संस्थाएं बनी हैं उन पर लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के हैं। दोस्तों, इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि चूंकि आपको मालूम है कि जो सिविल सर्विस, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसका भी प्री इसी से ही होता है, प्री इसी से स्टूडेंट सेलेक्ट कर आते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ध्यान में रख करके वो पर्यावरण के क्वेश्चन शायद इस बार ज्यादा डाले गए होंगे। तो आपको उसमें परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि बाप रे हमको ये सब याद करना है, सारे याद करने हैं। लेकिन उसमें एक चीज आपने खासकर ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें लिखा है कि विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, विच वॉज ऑफेन कम केम इन न्यूज पेपर्स, कुछ इस तरह के वर्डिंग्स हैं जिनकी चर्चा किसी न किसी माध्यम से हुई। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा आप तनाव में मत आइएगा, इसलिए क्योंकि फिर आप एक एक छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देने लगेंगे और पता लगा कि आपके पास फिर इतनी छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और आपस में मिलकर के इतनी घिचपिच हो गई कि उसमें कोई भी आपके किसी काम की नहीं रह गई, है ना। तो केवल आपको सतर्क रहना है, बस परेशान नहीं होना है, राइट फ्रेंड्स। तो ये मैं तैयारी के आपको एक दूसरे, एक तरह से जिसको आजकल आप लोग बहुत यूज होने लगा फंडा, वो मैं आपको बता रहा था कि कैसे थोड़े सा आपको ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, आज तैयारी के बारे में, सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में बस इतना ही, और सच पूछे तो AIR न्यूज के बारे में भी इतना ही। और मैं अब तो न्यूज़पेपर पर चर्चा करने लगा था और अभी जो CDI शरणार्थियों को, रिफ्यूजी को लेकर के जो बात थी वो न्यूज़पेपर की थी। मित्रों, दो क्लिपिंग्स आज आपको और मिलेंगे, एक इकोनॉमिक, दोनों इकोनॉमिक टाइम्स के हैं और एक तो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे हायर एजुकेशन है उसकी क्या क्राइसिस हो रही है। इस एडिटोरियल कमेंट में जो मेन क्राइसिस बताया है वो ये है कि जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अब उन लोगों ने क्या है कि अपने यहां के प्रोफेसर्स को बहुत हाई सैलरी देना शुरू किया है, क्योंकि चूंकि टीचिंग में सैलरी बहुत कम थी तो अच्छे लोग टीचिंग में नहीं जाते थे, वो अपने दूसरा प्रोफेशन में चले जाते थे। तो अब अच्छे लोगों को जब तक नहीं लाएंगे तो एजुकेशन का लेवल कैसे अच्छा होगा, तो उन्होंने हाई सैलरी देनी शुरू की, तो टैलेंट भी अब उधर जाने लगा है। लेकिन उसको उन्होंने इस तरीके से एनालाइज किया है कि ऐसे में क्या हुआ कि एजुकेशन में फिर से एक इलीट ग्रुप बन जाएगा जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके आएगा, डेफिनेटली वो बेस्ट होगा और इनको पढ़ाने वाले भी बेस्ट हैं, और चूंकि उनको सैलरी बहुत ज्यादा दी जा रही है तो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आपको पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, इनकी फीस बहुत ज्यादा होगी। तो इसका क्या हल हो सकता है, ये हायर एजुकेशन में अभी जो एक नया सिनेरियो जो आ रहा है, मैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको ध्यान होगा कि लगभग 2 या 3 सप्ताह पहले मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें यह बताया था कि किस तरह से जो स्कूल के टीचर्स हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी सैलरी कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, जिसमें 600 इंस्टीट्यूशंस के नाम थे जो खासकर एक इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, वो बहुत हाई सैलरी देने लगे हैं, और बट नेचुरली कि फिर वो स्टूडेंट से चार्ज भी करते हैं। तो इस समस्या को लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है, और इसके बाद दोस्तों एक एडिटोरियल आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, वो खासकर अभी पटेल समुदाय के द्वारा जो आरक्षण की मांग की जा रही है उसको लेकर के है। उसमें उन्होंने जो सबसे अच्छा प्रश्न उठाया है वो ये है कि 25 सालों में भारत का जो इकोनॉमिक सिनेरियो जो बदला है उसमें हुआ यह है कि फैक्ट्रीज बहुत लगी, इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी हुआ हो, ग्रोथ रेट भी हाई दिखाई दे रही है, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हुआ है। और नतीजा यह हो रहा है कि अब जब लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर अब इस तरीके से उसका प्रेशर सोसाइटी पर बिल्ट अप हो रहा है, गवर्नमेंट पर बिल्ट अप हो रहा है। तो इसका जो निराकरण है वो आरक्षण नहीं है, निराकरण जो है वो जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाने से है। और उसमें उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि गुजरात में जो 1/4 जो वहां की आय है वो पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोपदार्थों जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके निर्यात और उससे उत्पादन से होता है, जबकि वहां जॉब क्रिएशन बहुत कम है क्योंकि ये सब कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री है, लोगों को काम की जरूरत काम नहीं मिलता है, वो सारा काम उनका ऑटोमेटिक होता है, मशीनरी से होता है। तो इस तरह से एक नई सोच फिर से डेवलप हो रही है कि किस तरह से मशीन के स्थान पर मनुष्य को लाया जाए। मैं कई आर्टिकल्स में अब ये चीजें देख रहा हूं। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स की और भी क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं, आप लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं दोस्तों अंतिम चरण पर जो ईमेल का है। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट का नाम बता रहा हूं जो अभी अक्टूबर के बैच में आ रहे हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। इनका नाम है प्रभंजन प्रताप सिंह, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि जो भी उस एरिया से आ रहे हो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9450624389, ये उनका मोबाइल नंबर है। प्रभंजन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे मेल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों एक सुरेखा जी का मुंबई से फोन मतलब मेल आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है और हम सब मिलकर उनकी मां की तबीयत के लिए प्रार्थना करें। तो मित्रों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुरेखा जी की मां के स्वास्थ्य के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। पूजा माथुर का फोन ई मेल है, फोन बार बार निकलता, पूजा माथुर का ईमेल है जयपुर से। उन्होंने लिखा है उसी तरीके से जो मैं कह रहा हूं कि आपको मैं आईएएस कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। पूजा माथुर जी, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, और इस इश्यू को लेकर के मैं लगभग 2-3 दिन में एक बार चर्चा कर ही लेता हूं। तो जो मेरी ये चर्चाएं हैं उन्हीं सबसे अगर आप लोग डिसाइड कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा व्यावहारिक होगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट या कोई बहुत ही ज्योतिष शास्त्रीय या भविष्य वक्ता नहीं हूं कि मैं बता दूं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। मेरे सिद्धांत इस मायने में बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। तो दोस्तों अंत में मैं सभी उन मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेल लिखा है और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। उनमें से कुछ के नाम है निशा कुशवाहा इलाहाबाद से, जया जबलपुर से, रजत बोलपुर से, सोनिका दुबे थाने से, सुरेंद्र ध्रुव भाटापारा छत्तीसगढ़ से, नचिकेता गया से, विकास चौहान दिल्ली से, श्यामली कटारिया जम्मू से, हरिओम तिवारी इलाहाबाद से, चंदन पांडे नवादा बिहार से, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर से, सौरभ चौहान नैनीताल से और मोहम्मद सलीम इलाहाबाद से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ ही अब इजाजत चाहूंगा, सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।